अमरजीत जी ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे उसे अपने गले से लगा लिया। शायद अर्जुन को इसकी जरूरत थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने उनसे अलग होते हुए सवाल किया, डैड, निया ने डिनर किया? हाँ, माला ने उसकी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें हेल्दी डिनर करवा दिया है और अब वो सो रही है। अर्जुन, हम चाहते हैं कि आप एक बार निया का प्रॉपर चेकअप करवा लें ताकि हमें बच्चे की कंडीशन के बारे में पता चल सके। अर्जुन ने हामी भरी, फिर फ्रेश होने का कहकर अपने कमरे में चला आया। नियति सच में सो चुकी थी। अर्जुन कुछ सोचकर उसके पास आकर बैठ गया और हल्के से उसके पेट पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में बोला, हेलो चैम्प। आज आपके डैड पहली बार आपसे बात करने आए हैं, क्योंकि आज ही उन्हें पता चला है कि आप उनकी जिंदगी में आने वाले हैं। चैम्प, आपकी मम्मा आपको नहीं चाहती, पर आपके डैड आपको अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं और जो कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं। आज आपके डैड आपसे ये वादा करते हैं कि वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप इस दुनिया में जरूर आएंगे और आपके डैड आपको बहुत सारा प्यार देंगे। आपके बर्थ के बाद आपकी मम्मा आपसे और आपके डैड से दूर चली जाएंगे, पर आपके डैड कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपको मम्मा और डैडी दोनों का प्यार देंगे। आप उनके जीने की वजह बन गए हैं और आपकी मम्मा के जाने के बाद हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है, इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा और डैड भी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। मुझे आपके आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो आप जल्दी जल्दी बड़े होकर डैड के पास आ जाइएगा। अर्जुन ने झुककर हौले से निया के पेट को चूम लिया। निया नींद में थोड़ा कसमसाई, जिससे अर्जुन तुरंत ही उससे दूर हट गया, पर निया वापस सो गई। अर्जुन ने एक नज़र सोती हुई निया को देखा और भावहीन सा बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन फ्रेश होकर नीचे पहुंचा और अमरजीत जी के साथ डिनर करने के बाद वापस रूम में आकर निया से उचित दूरी बनाकर बेड पर लेट गए। बीते दिनों और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई, उसको एहसास ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ शान अपने रूम में बैठा न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था और उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। कुछ देर बाद आरवी ने रूम में कदम रखा तो शान ने फोन ऑफ करके साइड टेबल पर रख दिया और आरवी की तरफ निगाहें घुमाते हुए बोला, हो गया तुम्हारा काम खत्म? आरवी ने हामी भरी, फिर शाम वाली बात याद करते हुए बोली, अब तो आप ठीक हैं? शान ने छोटा सा जवाब दिया और अपनी जगह पर लेट गया। उसके दिमाग में न्यूज और उसे कुछ देर पहले आया निया का मैसेज घूम गया। आरवी ने एक नज़र उसको देखा, फिर चेंजिंग रूम के तरफ चली गई। शान ने उसकी जाते ही अपना फ़ोन उठाया और एक बार फिर निया के भेजे मैसेज को पढ़ने लगा। शान, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, पर अब मैं घर से बाहर नहीं आ सकती। अर्जुन ने मुझे अपने घर में कैद कर दिया है, क्या तुम एक बार मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हो प्लीज़? बस इतना ही था उस मैसेज में। शान ने फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया और अपनी आँखें बंद कर दी। अब भी उसके कानों में न्यूज़ में सुनी बातें और आंखों के सामने निया का मैसेज घूम रहा था। कुछ देर बाद आरवी वहां आई। शान को यूं लेटे देख वो समझ गई कि वो सोया नहीं है और अब भी परेशान है, पर इस बार उसने कुछ कहा नहीं और दूसरी तरफ जाकर लेट गई। अपने रूम में बेड पर लेटी सृष्टि न्यूज में दिखा रहे अर्जुन के जवाबों को सुन रही थी, बार बार सुन रही थी, और उसकी निगाहें अर्जुन के चेहरे के भावों पर टिकी थीं। अगली सुबह शान रोज की तरह ऑफिस चला गया। निया के लिए उसने कुछ सोच लिया था और अब वो शाम को उससे मिलने जाने वाला था। सुबह उसकी आरवी से ठीक ठाक बात हो गई थी और उसने ही आरवी को डांस एकेडमी छोड़ा था। अर्जुन सुबह सुबह पहले निया को लेकर हॉस्पिटल गया था। उसके सारे टेस्ट करवाने के बाद उसने उसको घर छोड़ा और माला का उसका ध्यान रखने का कहकर खुद ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह से व्यस्त था तो सृष्टि का ख्याल उसके दिमाग से निकल गया था। आज भी वो रोज के रास्ते से ही ऑफिस जा रहा था और जरा लेट हो गया था। उसकी कार तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसकी निगाहें कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे खड़ी बाइक पर पड़ी और वो दूर से ही उस बाइक को पहचान गया। आखिर पहचानता भी कैसे नहीं, यही तो वो जगह थी जहां अब तक वो सृष्टि से मिलता आ रहा था और यही बाइक हर बार उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। वो दूर से ही पहचान गया कि ये बाइक सृष्टि की ही है। उसने कार की स्पीड कम की और बाइक के पास जाकर कार खड़ी कर दी। उसने विंडो से बाहर निगाहें घुमाई। बाइक से कुछ दूरी लगे पेड़ के नीचे रखे बड़े से पत्थर पर बैठी सृष्टि पर निगाह पड़ते ही उसके भाव एकदम से बदल गए। सृष्टि आज भी फॉर्मल में थी, मतलब ऑफिस जाने को तैयार हुई थी। अपनी कोहनियों को अपने घुटनों पर टिकाए और हथेली को अपने गालों पर रखे वो मुंह फुलाए बैठी थी। अर्जुन ने उसको देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ निगाहें घुमाई तो 10:30 बज चुके थे। उसने सृष्टि को इस वक्त वहां देखा तो कार के अंदर से ही उसको पुकारते हुए बोला, सृष्टि, तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? क्या आज फिर तुम्हारी बाइक खराब हो गई है? चलो उठकर यहां आओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूं। अर्जुन ने अपने आप ही अंदाजा लगा लिया और उसकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हो गया। पर सृष्टि के अंदाज जरा बदले बदले लग रहे थे। अर्जुन की आवाज कानों में पड़ने पर भी उसने उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं, उल्टे मुंह बिगाड़ते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अर्जुन चौंक गया। अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें हैरानी से और ज्यादा बड़ी बड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपने तरफ का डोर खोला और लंबे लंबे डग भरते हुए जाकर सृष्टि के सामने खड़ा हो गया। सृष्टि, उठो यहां से, ये कोई जगह है बैठने की? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अपनी सेफ्टी का और इमेज का कुछ तो ख्याल रखा करो, चलो अब जल्दी से उठो। अर्जुन उसके पूरे हक से डांट रहा था और सृष्टि उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। अर्जुन के इतना कहने पर भी वो खड़ी नहीं हुई, उल्टा और पसर कर बैठ गई। सृष्टि थी ही जिद्दी और बचपना तो उसमें कूट कूट कर भरा था। तभी शायद उसकी हरकतें हर बार अर्जुन के बेचैन मन को शांत कर दिया करती थीं। उसका चंचल स्वभाव उसकी सबसे बड़ी खासियत था और उस पर कभी कभी उसका एकदम समझदारों जैसे बातें करना सोने पर सुहागा था। पर फिलहाल तो वो अर्जुन से खफा थी और बच्चों जैसे मुंह फुलाए बैठी थी। आमतौर पर अगर सृष्टि की जगह कोई और होता तो अर्जुन उसके इस बचपने पर अब तक उस पर भड़क चुका होता, पर विडंबना ये थी कि सामने कोई और नहीं सृष्टि थी, जिसकी नाराजगी से अर्जुन को बहुत फर्क पड़ने लगा था। अर्जुन ने उसके फूले गाल देखे और गहरी सांस छोड़ते हुए अब प्यार से बोला, अगर तुम यहां बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी तो तुम्हें इतना इंतजार करवाने के लिए सॉरी। प्लीज यहां से उठकर चलकर कार में बैठो, उसके बाद जितना नाराज होना होगा हो लेना, ऐसे खुले में खड़े होना ठीक नहीं है। मुझे ना तो आपसे कोई बात करनी है और ना ही आपके साथ कहीं जाना है, तो आप चले जाइए यहां से। वैसे भी आप बड़े आदमी हैं, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, तो अपना वक्त मुझ जैसी नाचीज और मामूली सी लड़की पर बर्बाद मत कीजिए। इतनी देर में अब जाकर सृष्टि ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसके हर शब्द में उसकी नाराजगी झलक रही थी, जिसे अर्जुन महसूस कर पा रहा था। उसने एक बार फिर कोशिश की। सृष्टि, देखो तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम यहां मेरा इंतजार करने वाली हो, मैं किसी काम में फंस गया था, जानबूझकर तो मैंने तुम्हें इंतजार नहीं करवाया है, तो तुम्हारे नाराज होने का क्या मतलब हुआ? अगर तुम्हें मुझसे मिलना था तो मुझे पहले फोन करके बता देती तो तुम्हें यहां उतनी देर तक मेरा इंतजार ना करता पड़ता। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि सृष्टि एकदम से उस पर भड़क उठी। टू बी कंटिन्यूड।